प्रस्तुत है नाटक जिंदगी का सार, लेखिका इंदु संतोष।
मेम साहब, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ?
अरे, कौन हो तुम? ऐसा लगता है तुम्हें कहीं देखा है।
मेम साहब, मैं सिंदूरी।
सिंदूरी तुम?
हाँ मेम साहब।
ये क्या हाल बना लिया है तुमने? हमारे छोटे से वर्कशॉप की ड्रेस डिजाइनर, और इस हाल में, इतनी गरीबी में?
क्या करूं मेम साहब, वक्त वक्त की बात है, समझ में ही नहीं आता भगवान मुझसे चाहते क्या है। कभी रिश्तेदार पीछा नहीं छोड़ते और कभी मैं उनका पीछा नहीं छोड़ती।
तू बेवकूफ है, रिश्तेदार तुझसे फायदा उठाते रहते हैं और तू जानते बूझते अपना कमाया धमाया सब के सब उनके हाथ पर धर देती है। खैर ये बता, आज इधर कैसे रास्ता भूल गई? बोल बोल, संकोच मत कर, मैंने हमेशा तुझे अपना समझा है, जानती है ना?
जी मैम साहब, इसीलिए तो आई हूँ। आपके वर्कशॉप में मुझे फिर से काम मिलेगा क्या?
अरे, ये भी कोई पूछने की बात है? सिंदूरी क्या बात पूछ रही है? तुझे काम पर रखकर मैं तुझ पर एहसान नहीं करूंगी। तू है ही इतनी लायक, कपड़ों के लिए तू इतने अच्छे अच्छे डिजाइन बनाती है कि सब देखते ही रह जाते हैं।
तो मेम साहब, कल से आ जाऊं मैं काम पर?
अरे आज से, अभी से,
सच
जब से तुम्हारी इच्छा हो जाए। अब रोने लग गई, रो क्यों रही है? अरे रोती क्यों है भाई?
मेम साहब, मैं सोचती हूँ कि यदि आप नहीं होती तो मेरा क्या हाल होता। मेम साहब,
फालतू की बात सोचने लग गई।
जानती हूँ मेम साहब, सब रिश्तेदार मतलबी हैं, पर मैं क्या करूँ, उन लोगों के चालाकियां मैं कभी भी समझ नहीं पाती मेम साहब।
चुप हो जा, रो मत। चुप हो जा सिंदूरी, तू तो बहुत हिम्मत वाली औरत है, बस ईश्वर ने तुझ में दया कूट कूट कर भर दी है। बहुत ही दयालु है तू, इसलिए हर रिश्तेदार की मदद करती फिरती है। चल उठ, उठ यहाँ से, उठ, रसोई में चल। मैं जानती हूँ तूने अभी तक न चाय पी होगी, न खाना खाया होगा, न कुछ खाया न पिया, ना ना उठ उठ, खड़ी हो जा।
मेम साहब, खाना इसलिए नहीं खाया क्योंकि भूख बिल्कुल भी नहीं है। मेम साहब, आप तो मुझे बस काम बताइए।
काम बताइए? अरे पहले अच्छी तरह हाथ मुंह धो ले, बल्कि मैं तो कहती हूँ नहा ले, गर्मी कितनी पड़ रही है। मैं तेरे लिए कपड़े निकाल देती हूँ,
अरे
आराम से खाना खा, तब दोनों बतियाएंगे। अरे फिर आंसू गिरने लग गए, तू रोती क्यों है भाई बार बार? अब तो घर में आ गई है ना? हाँ सास।
क्या करूं मेम साहब, जब से आपके पास से भाई के घर गई थी तभी से सुबह से रात तक सिर्फ रोना। आप तो मेरी भाभी को जानती हैं
अच्छी तरह,
कितनी चालाक है, पर भाई के कारण मैं कुछ बोल नहीं पाई मेम साहब। पति जब भगवान के घर गए तो ससुराल वाले तब से पूछते भी नहीं है। अच्छा मेम साहब, मैं नहा लूं?
हाँ हाँ, तू नहा ले।
अरे भाई लता, कहाँ हो? क्या हो रहा है?
मैम साहब, साहब जी आ गए।
अरे भाई चलो चाय वाय बनवाओ।
नमस्कार साहब जी।
कौन?
चमक गए ना?
कौन है? मैंने पहचाना नहीं।
साहब जी, सिंदूरी।
चुप चुप चुप, ये बोलेंगे पहचानेंगे।
ठहरो ठहरो ठहरो, सिंदूरी है क्या?
जी साहब जी,
पहचान गए पहचान गए।
वही तो मैं कहूँ कि पता नहीं कहाँ देखा है तुम्हें। लेकिन सिंदूरी
जी,
भाई ये क्या हो गया तुमको?
साहब,
क्या हाल बना रखा है तुमने? क्या बहुत बीमारी मार हो गई थी?
नहीं साहब जी।
क्यों रे, अपनी मेम साहब को एक पत्र तक नहीं भेज सकती थी, दो लाइन नहीं लिख सकती थी? क्या सारा जितना भी वो पोस्ट ऑफिस का जो विभाग है वो बंद हो गया है?
नहीं साहब जी।
क्या हुआ, हो क्या गया ये बताओ पहले।
ये शरीर तो थककर जैसे टूट गया साहब जी, पर मन तो जैसे पूरी तरह टूट गया। मुझे तो अपनी सुध ही नहीं रही।
बहुत दुखी है जी, बहुत ही दुखी।
पर तुम तो, तुम्हारे पति की तो मृत्यु हो गई थी ना?
और जी साहब जी।
उसके बाद तुम, मुझे जहाँ तक याद पड़ता है तुम अपने भाई के घर चली गई।
जी साहब जी।
लो।
अरे भाई मेरी चाय कहाँ है, गिलास मेरा चाय का।
चाय ले तो आई हूँ, चाय लो। अजी इस जमाने में कौन किसका होता है, भाई न भाई न भाभी न अभी न सब सब बस कहने को भाभी और भाई, कोई किसी की मदद नहीं करता, अपने ही बोझ से दबे रहते हैं वो। इस जमाने में कौन किसका होता है। और एक बात बोलूं, परायों से ज्यादा तो अपने ही ज्यादा फायदा उठाते हैं।
सच कह रही हैं मैम साहब आप, पति की मृत्यु के बाद फैक्ट्री में इनकी जगह मुझे नौकरी मिल गई थी साहब जी।
अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात थी, तो तुमने क्यों नहीं कर ली नौकरी?
साहब जी वो सास ससुर और देवर कहते रहे साहब जी कि हमारे होते हुए तुम क्यों नौकरी करोगी।
लो,
ये तुम्हारा ही तो घर है, तुम हमारी बहू हो, पर हम तुम्हें बहू नहीं मानते, तुम तो हमारी बेटी हो।
लो,
और घर में रहो और मजे से रहो। पर साहब उनकी मक्कारी को तो मैं बिल्कुल नहीं समझ पाई। मेरे पति के बदले जो नौकरी मुझे मिलने वाली थी ना साहब जी, वो मेरे देवर को दिलवा दी गई।
इसलिए इसे मना कर रहे थे कि तू नौकरी मत कर।
समझ में आ गया सारा खेल मुझे, सिंदूरी क्यों वो ऐसा कह रहे थे। लेकिन अब उन लोगों के बारे में आगे बताने की कोई जरूरत ही नहीं है, मैं सब समझ गया हूँ। तेरे ससुराल वालों ने कुछ दिन तो अच्छा रखा होगा, और फिर मैं बताऊं क्या हुआ होगा, तुझे सताना शुरू कर दिया होगा।
जी साहब जी,
ठीक कह रहे हो आप, मैं तो सोच में पड़ गई थी। वो तो इसने ये अच्छा किया कि पति के रहते ड्रेस डिजाइनिंग का डिप्लोमा कर लिया था, और इसके ससुराल वालों ने तो हद ही कर दी थी। इसके पति की पेंशन के रुपए तक छीन लेते थे, कितने नीचे जी।
अच्छा,
हाँ?
ये भी और कसर रही गई थी।
क्या
बताऊं, दैनिक आवश्यकताओं के लिए दूसरों के सामने हाथ फैलाना पड़ता था इसको, सभी चीज तकती है, साबुन है, ये है वो है। एक एक्सीडेंट के तीर्थ पर गए माता पिता की, बस का एक्सीडेंट हो गया और वो दोनों भी भगवान के घर चले गए, मतलब पियर में कोई बचा ही नहीं भाई को छोड़ के।
तेरे भाई भाभी तो हैं ना?
वही तो बता रही थी।
क्या बताऊं साहब जी, जब मुसीबत आती है ना तो चारों ही तरफ से आती है। जब तक माता पिता जिंदा थे तब तक भाभी ये दर्शाती थी कि उन्हें मुझसे बहुत प्रेम है, पर जैसे ही माता पिता की मृत्यु हुई उनका व्यवहार मेरे प्रति इतना खराब हो गया कि मैं आपको बता नहीं सकती साहब जी।
लेकिन कुछ कमाने धमाने के लिए कुछ।
सुनो ना मेरी बात, यहाँ तक कि ड्रेस डिजाइन से जो रुपए मिलते, ये वहाँ भी बैठी नहीं काम करती रही, घर का काम पूरा कर दी थी, उसके बाद अपनी ड्रेस डिजाइनिंग का भी काम करती थी।
वही तो मुझे कुछ लग रहा था, तूने एक बार जिक्र किया था।
हाँ।
कि ड्रेस डिजाइनिंग का काम करती थी,
तो जो रुपए उससे मिलते थे ना उस पर भी इसकी भाभी की नजर पड़ने लगी। वक्त बेवक्त महंगाई का रोना, सिंदूरी के सामने रोने बैठ जाती, अरे बाप रे इतनी महंगाई है, पूरा ही नहीं पड़ता है, रुपए पूरे नहीं पड़ते हैं, भाई का रुपया तो यूं ही खत्म हो जाता है, क्या करें, किससे मांगने जाएं।
और तो और साहब जी, मेम साहब जी, एक बार तो मैंने सोचा भी था कि ड्रेस डिजाइनिंग का जो रुपया मुझे मिलता है ना वो भी अपने भाभी के हाथ में रख दूं।
सुन लो इसकी अकलमंदी की बात।
पर मेरी अंतरात्मा ने मेम साहब, बिल्कुल उस आवाज ने मेरे बढ़े हुए हाथों को रोक दिया और सारा रुपया यदि मैं भाभी को दे देती तो वक्त पर जरूरत पर मैं क्या करती।
ये तुमने बहुत समझदारी का काम किया सिंदूरी, लेकिन उसके बाद क्या तेरे भाई भाभी ने तुझे तुझसे अच्छा व्यवहार नहीं किया, तेरी स्थिति को समझा नहीं, तुझे घर से निकाल दिया?
ऐसे बेवकूफी तो मेरे भाभी कर ही नहीं सकती थी ना साहब जी। यदि वो मुझे घर से निकाल देती तो घर का काम भला कौन करता?
हाँ।
घर का पूरा काम तो मैं ही करती थी ना साहब जी।
पर एक बात बता सिंदूरी, ये सब तो मैंने सुन लिया, तेरी भाभी के अत्याचार भी सुन लिए, लेकिन तेरे भाई की अकल को क्या हुआ था? तेरा भाई तेरी भाभी से कभी कुछ नहीं कहता।
अजी होगा जोरू का गुलाम, औरत की सुनता होगा बस।
अरे कुछ तो कहना चाहिए ना।
बहन के लिए कौन सोचता है?
मैंने कहा ना साहब जी, भाभी मेरी बहुत ही चालाक थी, भाई के सामने ऐसा दिखावा करती कि मैं आश्चर्य में पड़ जाती थी। भाई से कहती, सिंदूरी मेरी नंदन नहीं, मेरी बहन है। देखो ना, घर के काम के लिए कोई नौकरानी भी नहीं रखने देती, जबकि मैं बिल्कुल नहीं कहती थी। कहती थी, अरे घर के काम के लिए क्यों बेकार में रुपया खर्च करती हो, मैं हूं ना, फिर हम दोनों मिलकर घर का सारा काम निपटा लेंगे। पर मैं वो सब नहीं समझ
समझ में नहीं आया इसको।
इसका भाई भी इसके जैसे सीधा साधा परंतु अकलमंद इंसान था। उसने एक बार इसकी भाभी से कहा, बड़ी अकलमंदी की बात कही, कि क्यों ना हम सिंदूरी की दूसरी शादी कर दें?
अच्छा?
छोटी उम्र की लड़की है, अभी इसकी उम्र भी क्या है, सिर्फ 22 साल की है, और मुझे तो इसकी बहुत चिंता होती। वो तो बिल्कुल इस हक में था कि इसकी दूसरी शादी हो जाए।
तो क्या किया फिर भाभी ने?
अरे साहब, इतना सुनते ही मेरी भाभी ने तो बस माथा ठोक लिया। कहने लगी, तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? जानते नहीं हमारे समाज में दूसरा विवाह नहीं होता। और साहब जी, मेरा भाई चुप हो गया।
बस वो तो अपनी पत्नी की ही सुनता था ना जी, बात तो यही थी।
तेरी माँ बहुत समझदार स्त्री थी, अंधविश्वासों और आडम्बर युक्त रूढ़ियों से बहुत दूर थी।
बहुत अच्छी थी इसकी माँ तो सच में।
भाई तभी तो तेरे भाई और तुझमें कोई फर्क नहीं समझा, दोनों को पढ़ाया।
फिर खबर मिली हार्ट अटैक से भाई की मृत्यु हो गई। ये अपनी भाभी और भतीजे को अपने साथ ले आई। कैसा स्वार्थी जमाना आ गया, जब पास खुशियों का ढेर रहता है तब वो किसी की परवाह नहीं करता, जब कोई मुसीबत आती है तो उनका सहारा लेने से नहीं चूकता। जिनके दुख में उसने सहारा देने से इनकार कर दिया था, इतना चालाक है इंसान।
चलो अच्छा ही हुआ, पहले तू अकेली रहती थी तो लता को तेरी बहुत चिंता लगी रहती थी।
जी साहब जी।
इसकी भाभी ने सिंदूरी से कहा, तुम्हारे भैया की बहुत इच्छा थी कि तुम्हारा भतीजा इंजीनियर बने, अब उसकी इच्छा कैसे पूरी करूं? सोच रही हूँ किसी के घर में नौकरानी का काम कर लूं।
तो मेम साहब, मैंने कहा, हमारी इतनी खराब स्थिति तो नहीं आई है कि आपको किसी के घर में नौकरानी का काम करना पड़े। मैं मेरे भतीजे को इंजीनियर बनवाऊंगी, पढ़ाई का सारा खर्च मैं दूंगी, इधर आपका वर्कशॉप भी दिनों दिन तरक्की कर रहा था।
सिंदूरी, ये सब तेरी मेहनत का नतीजा है।
मेम साहब तो मुझे कभी भी पराया नहीं समझ सके, हमेशा मेरा ख्याल ही रखती थी। इधर मेरा भतीजा इंजीनियर बन गया, उसकी नौकरी दूसरे शहर में लग गई, भाभी भी बेटे के साथ चली गई, फिर भतीजे का विवाह भी हो गया, फिर पोते का जन्म हुआ।
तभी इसके भतीजे की चिट्ठी आई, उसमें लिखा था, बुआ जब बेटा बहू कमा रहे हैं तो तुम्हें नौकरी करने की क्या जरूरत है, यहाँ आ जाओ और आराम करो। मैंने तुमसे कहा भी था यदि तुम वहाँ जाना चाहती हो तो अच्छी तरह सोच लो, फिर तुम चली गई, उसके बाद आज तुम्हें देखा है।
भाई बीते वर्षों में और ऐसा क्या हुआ जो तुम तन मन से टूट गई?
मेम साहब, दरअसल भतीजे ने अपने बच्चे को संभालने के लिए ही तो मुझे बुलाया था।
अच्छा।
बच्चा इन 7 सालों में काफी बड़ा हो गया, अब उनकी नजर मेरे रुपयों पर थी जो पति के पेंशन के रूप में मुझे मिलती थी। मेरा खाना कपड़ा उन्हें अखरने लगा। अब मैं भी इस तरह अपमान सहकर वहाँ नहीं रहना चाहती हूँ, इसलिए आपके पास चली आई मेम साहब। मेम साहब, आपके और साहब जी की जिंदगी का सार तो यही है कि कभी खाली नहीं बैठना चाहिए, कुछ न कुछ करते रहना चाहिए, तो तन मन भी स्वस्थ रहता है और इज्जत भी बनी रहती है। मैं ठीक कह रही हूँ ना साहब जी?
बिल्कुल ठीक है। क्यों लता भाई, जिंदगी का सार तो यही है। अरे यही है
जिंदगी का सार।
जिंदगी का सार, अभी आपने ये नाटक सुना। लेखिका थी इंदु संतोष और कलाकार इंदु संतोष, कल्पना दुबे और संतोष जोशी।